घमंडी आदमी। आस्था के मुंह से अपने बारे ऐसी अनाप शनाप बातें सुनते ही अरमान की आंखों का रंग बदलने लगा। उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब आगे अरमान ने अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि आस्था लगातार बड़बड़ाए जा रही थी और बार बार अपने शरीर के अंग दिखाते हुए अरमान को इरिटेट कर रही थी। आपने मुझे यहाँ काटा, यहाँ चूमा, यहाँ ये किया, वहाँ वो किया, यहाँ से छुआ। आस्था के मुंह से ऐसी बातें सुन सुनकर अरमान को काफी अजीब लग रहा था। अचानक उसने परेशान होकर गुस्से में कांपते हुए अपना हाथ आस्था के मुंह पर दबा दिया और उसे पीछे धकेलते हुए बहुत जोर से चिल्लाया, बस बहुत हुआ, शट अप, कितना ज्यादा बोलती हो तुम। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती हो? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितना ज्यादा पटर पटर करती हो? क्या तुम्हारा इतना ज्यादा बोलना जरूरी है? देखो, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हुआ, कब हुआ, लेकिन बहुत जल्द मैं इसके बारे पता कर लूंगा। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर इसमें तुम्हारी जरा सी भी चाल निकली या तुमने कोई गंदा खेल खेला होगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और रही बात इन सब चीज़ों की, तो इसके बारे में फिक्र मत करो। और हाँ, जो कुछ भी कल रात हमारे बीच हुआ है, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। याद रखना, अगर तुमने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर अरमान आस्था को चेतावनी भरी नज़रों से घूरते हुए सीधा वॉशरूम में चला गया था। वहां जाकर उसने बाथरूम की दीवार पर मुक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी थी। फिर वो झल्लाकर खुद को कोसने लगा था कि आखिर वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है, वो ऐसे कैसे बह गया। अरमान सिंघानिया तो नींद में भी अपने होशो हवास पर कंट्रोल रखता है, तो फिर वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठा? क्योंकि आस्था का शरीर इस बात की गवाही दे रहा था कि वाकई अरमान और आस्था के बीच क्या से क्या हुआ था। ऊपर से वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, उसका दिमाग काफी परेशान और उलझा हुआ था। अरमान के वहां से जाने के बाद आस्था मुंह दबाकर हंसने लगी थी। फिर वो अपने हाथ बांधकर बड़े ही एटीट्यूड से बोली, मेरे प्यारे खड़ूस पतिदेव, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आप कभी भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपने मेरे साथ ये सब अपनी मर्जी से किया है। अचानक आस्था के चेहरे पर काफी तनाव दिखाई देने लगा था। उसका दिल एक अजीब से डर, घबराहट और बेचैनी से भर गया था। उसे अचानक ही संजना का ख्याल आने लगता है। उसने एकदम से सोचा, अगर हमारी जगह वो संजना होती तो, अगर वक्त रहते अबीर जी ने हमें ये सब नहीं बताया होता तो क्या होता? कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हुए आस्था की आत्मा कांप उठी थी। पर शुक्र है, वक्त रहते उसने उस डायन से अपने पति को बचा लिया। उसने सोचा कि उसे अबीर का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अबीर की वजह से ही अरमान संजना के पास नहीं जा पाया था। अगर अबीर वक्त पर आकर नहीं बताता तो काफी कुछ हो सकता था। आस्था सीधे बराबर वाले कमरे में पहुंची, क्योंकि उसके कपड़े वहीं रखे हुए थे। वो वहां जाकर फटाफट फ्रेश हुई और कपड़े चेंज किए। इस बार उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने थे जो उसके निशानों को ढक सकें, ताकि अरमान की मोहब्बत की निशानियां किसी और को दिखाई ना दें। फिलहाल भले ही अरमान ने नशे में ही सही पर उसके साथ रिलेशन बनाया था, और आस्था अपने पति का साथ पाकर खुश थी। जल्दी से तैयार होकर अब वो अंश की ओर गई। वो अपने बच्चे को देखना चाहती थी और देर ना करते हुए फटाफट वहां पहुंची। अंश तो पहले से ही उठ चुका था और अब वो नानी माँ की गोद में खेल रहा था। सभी लोग इस वक्त हॉल में बैठे हुए थे। वहीं अरमान सोच रहा था कि कहीं ये लड़की नीचे जाकर किसी के सामने उल्टा सीधा ना बोल दे कि कल रात हमारे बीच क्या क्या हुआ था। अगर उसने किसी को कुछ बता दिया तो क्या होगा? दादाजी जाने कितने सवालों की झड़ी लगा देंगे। कहीं ना कहीं अरमान खुद ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। देर ना करते हुए उसने फटाफट अपने कपड़े बदले और नीचे आ गया, क्योंकि वो आस्था को एक बार फिर अच्छी तरह धमकाना चाहता था। लेकिन आस्था तो वहां से पहले ही निकल चुकी थी और इस वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि रौनक और मारिया के साथ मौजूद थी। वो दोनों बच्चों के साथ खेल रही थी। रौनक के अंदर डर, मायूसी, तनाव और मजबूरी जैसी भावनाएं उमड़ रही थी, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। मारिया चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। आस्था बड़े प्यार से बच्चों को संभाल रही थी और उनके साथ मजे से खेल रही थी। तभी नानी माँ घर के बनाए हुए नुस्खे का तेल लेकर छोटे बच्चों को मसाज करने लगी। नानी माँ ने पुचकारते हुए कहा, अले ले ले, अब हम दोनों बच्चों की अच्छे से मसाज करेंगे, देखना उनकी हड्डियां इतनी मजबूत होंगी कि कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये कहते हुए वो बच्चों से बातें भी कर रही थी। बच्चे भी कसम साकर उन्हें टुकुर टुकुर देख रहे थे। नानी माँ ने रौनक और मारिया का भी मसाज करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उन दोनों का शरीर भी डिलीवरी के बाद काफी कमजोर हो गया था। नानी माँ सबका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी और बाकी काम भी मारिया और रौनक को समझा दिया करती थी, ताकि बच्चों को संभालने में उन्हें दिक्कत ना हो। अब आस्था मुस्कुराते हुए छोटी प्रिंसेस और मारिया के बेटे को नानी माँ को थमा चुकी थी। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोली, नानी माँ, अंश कहाँ है? इस पर नानी माँ बोली, अंश तो आहान बिटवा के साथ नहाने गए हैं। तुम तो जानती हो ना आहान बिटवा अंश को अकेला कहाँ छोड़ता है, उसे नहलाने के लिए ले गया है। कह रहा था कि चैंप को वही नहलाएगा। अंश की मसाज मैंने कर दी है, बस वो नहलाने ले गया है। नानी माँ के शब्द ऐसे थे मानो जैसे रौनक के दिल को भीतर से कोई खींच रहा हूँ। क्योंकि आहान अभी तक अपनी बेटी से मिलने वहां उस कमरे में नहीं आया था। हालांकि आहान ने रौनक को देखने के लिए वहां आने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन नानी माँ ने उसे सख्ती से मना कर दिया था कि अभी अभी नया नया बच्चा डिलीवर हुआ है तो माँ और बच्चों को ज्यादा नहीं देखना चाहिए। तो थोड़े दिन, कम से कम 5 से 6 दिन तुम लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो और माँ और बच्चों को आराम करने दो। वो नवजात बच्चे हैं, इस वक्त उनके ऊपर किसी की भी ज्यादा धुन से गोद में नहीं ले सकते हैं, वरना उन्हें इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। नानी माँ की इस बात को सभी ने एक आदेश की तरह मान ली थी, इसीलिए किसी ने भी अब छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेने की कोशिश नहीं की थी। फिलहाल अब नानी माँ अच्छी तरह से उनकी केयर करते हुए बच्चों को मसाज देना शुरू कर चुकी थी। वहीं रौनक और मारिया मुस्कुराते हुए नानी माँ और बच्चों को मसाज करते हुए एकटक देखने लगी। नानी माँ ने रौनक और मारिया के मना करने के बावजूद भी उन दोनों के पैरों में, बाजुओं में, शरीर पर अच्छी तरह मसाज किया था। मगर रौनक का दिल और दिमाग दोनों इस वक्त अशांत था। उसने मन ही मन तय किया कि जैसे ही वो थोड़ा सा ठीक फील करेगी वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चल जाएगी। वो अब इस तरह घूंट घूंट के इस घर में नहीं रह सकती। वहीं अब अरमान जैसे ही तैयार होकर नीचे आया, अगले ही पल उसने देखा कि आस्था वहां मौजूद नहीं है। जब उसे पता चला आस्था तो कहीं और नहीं बल्कि रौनक और मारिया के साथ थी, तो इसीलिए उसे लगा कि उसे भी वहीं जाकर देखना चाहिए। उसने सोचा कहीं वो रौनक और मारिया को ही कुछ न बता दे, इस एंग्री बर्ड लड़की का कोई भरोसा नहीं है, वो जो मुंह में आता है बेपरवाही से बोल देती है। इसी सोच के साथ अब वो फटाफट से आस्था से मिलकर उसे एक बार समझाना चाहता था कि वो इस बात के बारे में किसी से भी जिक्र ना करे। फिलहाल रश्मि, राधिका, वंशिका ने मिलकर फटाफट से नाश्ता तैयार कर लिया था। नानी माँ के कहे अनुसार उन्होंने रौनक और मारिया को अच्छे से वहीं पर नाश्ता करवा दिया था और बाकी सब सदस्य के लिए भी नाश्ता लगा दिया था।
तब तक आकाश ने अबीर को फोन कर दिया था कि वो नाश्ते करने के लिए सिंघानिया मेंशन आ जाए, और साथ ही साथ आकाश ने अबीर को ये कहने से भी मना कर दिया था कि वो अरमान को इस बात के बारे में बिल्कुल ना बताए कि वो बैंक्रप्ट हो चुका है। उसकी इस बात पर अबीर ने सहमति जताई, लेकिन फिलहाल अब उन्हें अपने प्लान पर काम करना था। अरमान या राजवीर के सामने उन्हें कमजोर नहीं पड़ना था। वहीं बच्चों के मसाज वगैरह करने के बाद रौनक और मारिया को अच्छे से सुलाकर आस्था नानी माँ के साथ बाहर आ गई थी। वो नानी माँ से कुछ बातें करती हुई आ रही थी, लेकिन अरमान की नज़र आस्था पर ठहर गई। आस्था ने एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था जिसमें वो बड़ी प्यारी खिली खिली लग रही थी। अपने पति का प्यार पाकर उसके चेहरे का ग्लो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब फिलहाल अरमान बेफिक्री से आस्था को एकटक देख रहा था और मन ही मन हैरान होकर सोच रहा था कि अगर ये लड़की मेरे इतना करीब आई थी तो मुझे बुरा लगना चाहिए था, लेकिन मुझे सब कुछ इतना नॉर्मल क्यों लग रहा है? बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हम दोनों के बीच हुआ अच्छा ही हुआ है, वरना नशे की हालत में किसी और अनजान लड़की के साथ रहना तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं होता। कहीं ना कहीं अरमान वजह ढूंढ रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे इस बात का डर था कि कहीं आस्था दादाजी से उसके बारे में शिकायत न दे। वहीं ध्रुव, आकाश, सुमित सीधा वहां गए थे, जबकि आहान तो अंश को नहलाने में बिजी था और वो खुद से ही उसे नहला रहा था, और अंश को अच्छे से तैयार करके वो उसे वहां लेकर आ गया था। अंश को देखकर अरमान ने भी आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया था। अरमान की गोद में आकर अंश उसके साथ खिलखिलाकर हंसते हुए खेलने लगा था। वहीं अरमान अंश को बिना किसी इमोशंस के एकटक देख रहा था। कहने को तो वो उसका बेटा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराकर तो कभी उससे बात करता ही नहीं था। केवल इस तरह से उसे देखता था मानो वो 18 साल का एक नौजवान लड़का है जो उसकी बातों को अच्छी तरह से सुनता और समझता है। वहीं अभिमान जी और दादाजी मुस्कुरा के अंश और अरमान को टकटकी लगाकर देखते रहे। वहीं अरमान एकदम से गंभीर होकर अंश को समझा रहा था, अच्छे से नाश्ता करना और खाना कपड़ों पर नहीं गिरना चाहिए, सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है? और वैसे भी तुम अरमान सिंघानिया के बेटे हो, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहा करो, तुम इस तरह से हर किसी के सामने हंस नहीं सकते हो। अब जैसे ही अरमान इस तरह के इंस्ट्रक्शन अंश को देना शुरू किया तो वैसे ही अभिमान जी और दादाजी मुंह बनाकर अरमान की बातें हैरानी से सुन रहे थे। वहीं आकाश, सुमित और ध्रुव, आहान तो अरमान का घमंडी अंदाज देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बाप अपने बेटे को लाड दुलार कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई मिलिट्री ऑफिसर अपने बेटे को सख्त इंस्ट्रक्शन दे रहा था। कि किस तरह से चलना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना है, सब अरमान का घमंडी अंदाज देखकर हंस रहे थे। वहीं दादाजी अब थोड़ा सा मस्ती के मूड में आ चुके थे और वो अभिमान जी को देखकर अचानक से बोले, अभिमान मेरी बात ध्यान से सुनो, इस तरह से सबके सामने तुम्हें हंसना नहीं है, थोड़ा मच्योर बिहेव किया करो। तुम इस तरह से सबके सामने हंस नहीं सकते हो, तुम अभिमान सिंघानिया हो, आलोक सिंघानिया के बेटे, तो इस बात का ध्यान रखा करो और खाना वगैरह खाते वक्त बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, समझ गए तुम? अब जैसे ही दादाजी ने आवाज ऊंची करते हुए अपने पास बैठे हुए अभिमान जी को बातें सुनानी शुरू की तो अरमान का ध्यान दादाजी पर चला गया था। वहीं दादाजी की ऐसी हरकतें देखकर आहान और ध्रुव तो खुद को रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंस पड़े। वहीं अरमान थोड़ा झेप सा गया था क्योंकि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कुछ देर बाद आस्था हल्का सा मुस्कुराते हुए वहां आती है। वो उस पल मन ही मन सोच रही थी, बस कुछ दिन और मिस्टर सिंघानिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और मैं आपको ठीक करके रहूंगी। अब बस मुझे सिर्फ राजवीर जिंदल से मिलने का इंतजार है। राजवीर जिंदल से तो मैं वो एंटीडोट हासिल करके ही रहूंगी। इसी सोच के साथ वो कुछ प्लान बनाने लगी थी, लेकिन ठीक उसी वक्त नानी माँ के साथ आस्था को आया देखकर अरमान उसे घूर कर देखने लगा था। वहीं आस्था ने भी अरमान को खुद को ताड़ते हुए देख लिया था, इसीलिए एक बार फिर उसने अपना चेहरा बेचारा सा बना लिया था, मानो कि अरमान की हरकतों की वजह से वो कितना ज्यादा दुखी हो। अरमान को उसकी हरकतें देखकर हैरानी हुई, ये लड़की कैसे अजीब अजीब चेहरे बना रही है, ये लड़की तो एक नंबर की नौटंकीबाज है। कहीं ना कहीं अरमान उसकी हरकतें देख के अंदर ही अंदर चिढ़ रहा था। फिलहाल अब जल्दी ही नाश्ता लग चुका था। रश्मि ने सभी लोगों को नाश्ता करने के लिए बुला लिया था। सभी नौकर नाश्ता लेकर वहां चले आए थे। वहीं रश्मि ने सारा नाश्ता अपनी निगरानी में तैयार करवाया था। अब सभी डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गए थे। अरमान जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आया, उसे अजीब सा एहसास होने लगा था और बार बार केके के कानों में आस्था कही हुई बातें गूंज रही थी कि आप ध्रुव से पूछ सकते हैं, ध्रुव को आपकी पूरी कंडीशन के बारे में अच्छे से पता था। अब कहीं ना कहीं अरमान परेशान होकर यही सोच रहा था कि अब तक न जाने किस किस को उसके नशे में होने बारे में क्या क्या पता होगा, तो इसीलिए उसे वहां थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।